ಸ್ವಾಹಾತ್ಮನೆ ನಮಃ ಪ್ರಣಮೋರಿಹಂತಾಣ ನಮೋ ಸೀತಾಣ ನಮೋ ಆಯರಿಯಾಣ ನಮೋ ಅಜ್ಜಾಯಣ ನಮೋ ಲೋಯೇ ಸವಸಾಹು ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವೀರ ಮಂಗಲಂ ಗೌತಮೋ ಗಣಿ ಮಂಗಲಂ ಕುಂದಕುಂದಾರ್ಯ ಜೈನ ಧರ್ಮೋಸ್ತು ಮಂಗಲಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಾತನ್ಯತ್ಕರೋತಿ ಕಿಂ ಪರಭಾವಸ್ಯ ಕರ್ತಾತ್ಮ ಮೋಹೋಯಂ ವ್ಯವಹಾರಿಣಾಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ ನಮಃ ಸಮಯ ಸಾರಾಯ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯಾಚಕಾಸತೆ ಚಿತ್ಸಭಾವಾಯ ಭಾವಾಯ ಸರ್ವಭಾವಾಂತರಚ್ಛಿದೆ. ಯಹ ಕುಂದಕುಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಸಮಯ ಸಾರ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ಸಮಯ ಸಾರ್ ಕಿ ಜೋ ಪಹಲಿ ಜೋ ಅಮೃತ ಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ನೇ ಜೋ ಕೋಯಿ ಛಂದ ಲಿಖಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ತೋ ಅರ್ಥ ಹಮ್ನೆ ಕಲ್ ದೇಖಾ ಥಾ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಉನ್ಕಾ ದೂಸರಾ ಜೋ छंद है उसको देखते हैं. आप बोलेंगे अनंत धर्म.
अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्.
ये दैनहत पर तीसरे नंबर के पृष्ठ पर हवे बीजा श्लोक मां सरस्वती ने नमस्कार करे छे. पहले श्लोक में तो हमने देखा था उन्होंने देव को नमस्कार किया था. कैसा देव? तो कहते हैं कि इष्ट देव. ख्याल में आया? किसी विशेष व्यक्ति का या किसी देव का न नाम लेते हुए उन्होंने शुद्ध आत्मा को प्रणाम या प्रणमन किया है. उसके लिए उन्होंने बताया भी था कि किसी के विशेष व्यक्ति का नाम लेने से ये कोई हम पक्ष की बात करते हैं ऐसा होता है. और यहाँ पक्ष की बात न करते हुए शुद्ध आत्मा की बात की है और उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताते बताते अन्य मतों का खंडन भी उन्होंने किया हुआ है. अब अवे बीजा श्लोक मां सरस्वती ने नमस्कार करे छे. तो यहाँ जो बात आई अनेकांतमयी मूर्ति कि जेमा अनेक अंत एटले धर्म छे एवु जे ज्ञान तथा वचन तेमय मूर्ति. देखो कल हमने अनेकांत का स्वरूप देखने की थोड़ी सी कोशिश की थी लेकिन समय के अभाव से हमने टूक में वो बात खत्म कर दी. अभी देखो क्या है कि एक ही जो वस्तु है उसमें अनेक प्रकार के गुण है कहो धर्म कहो है और उस धर्म का एक एक धर्म को मुख्य करके कथन किया जाता है. तो उस धर्म के बारे में कहते हुए अन्य धर्मों को गौण किया जाता है. ख्याल में है ना? जैसा हमने देखा था किसी को दो लड़के हो बच्चे हो तो नाम लेते वक्त हम किसी एक का ही एक समय में नाम ले सकते हैं. अब जैसे घर में चार लड़के हैं और चारों की शादी करानी है तो जिसकी शादी होगी उसके ही गाना गाएंगे यानी उसके ही हम वर्णन सुनते हैं भले वो छोटा लड़का क्यों न हो लेकिन उस जिसकी शादी है उसकी ही बात करेंगे. वैसे यहाँ जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं उसी को मुख्य करके पूरा द्रव्य उस रूप है ऐसा कहने में आता है लेकिन वहां अपेक्षा लगा के बात होती है. जैसा हम ज्ञान गुण की बात लेते हैं तो ज्ञान गुण में तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ तो समझा रहे कि आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा ज्ञान के अलावा अन्य क्या कर सकता है, ऐसा समझाते हैं। तो क्या ऐसी बात है कि आत्मा में सिर्फ एक ही ज्ञान नाम का गुण है? है तो अनेक गुण, है तो अनेक धर्म, लेकिन यहाँ आत्मा को मुख्य करके बात कर रहे हैं, ख्याल में? वैसे देखो यहाँ तो स्यात यानी किसी अपेक्षा से द्रव्य का कथन करना, इसी को कहते हैं कि अनेकांत धर्म में से एक धर्म की बात है। अब मुख्य रूप से तो ये बात भी आप ध्यान में रखना, जब कोई आचार्य किसी एक बात को मुख्य करके कहते हैं तो वह किसी अपेक्षा से ही करते हैं, यानी वो स्यात पद जो है यानी कथनचित यानी किसी अपेक्षा से द्रव्य ऐसा ही है ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो तो कहेंगे द्रव्य नित्य है, तो हमें समझना चाहिए ये कथन किसका है। तो कहते आचार्यों का है या गणधरों का है या तो साक्षात तीर्थंकर का है, तो वह अपेक्षा सहित ही कथन कर रहे हैं, यह समझना अपना फर्ज है। लेकिन अन्य धर्मीय क्या करते हैं, किसी एक ही बात को सर्वथा ये कथनचित किसी अपेक्षा नहीं सभी अपेक्षाओं से सर्वथा ऐसा ही द्रव्य है ऐसा मानते हैं, तो उसको एकांत कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, तो हरेक जो अन्य अन्य जो लोग हैं उनके तो प्रत्येक वस्तु अनेकांतमय है, यह बातें जानते नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो प्रत्येक द्रव्य एकांत स्वरूप ही है ऐसा मानते हैं। विशेष रूप से अगर हमें जानना हो तो यह जो वेदांती है वे वेदांती प्रत्येक द्रव्य नित्य ही है ऐसा मानते हैं, और जो बौद्ध धर्मी है बौद्धवादी वे वह द्रव्य अनित्य ही है ऐसा मानते हैं। वो कैसा मानते हैं कि द्रव्य नित्य ही है, तो ही जो लगाते हैं तो ही का अर्थ होता है सर्वथा ऐसा ही है। अब जो जैनी होवे वो क्या कहेगा, द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से नित्य ही है। तो इतनी सारी बात न कहते, स्यात नित्य ही है ऐसा कहेंगे, या स्यात भी नहीं लगाएंगे नित्य ही कहें है ऐसा कहेंगे। तो स्यात यानी किसी अपेक्षा से वह नित्य ही है ऐसा कहने से उसमें एक बात एक को मुख्य करने की बात वहां पर कही। तो अन्य लोग क्या कहते हैं कि आपने जैन धर्म बनाया तो उसमें सबका एक एक मत लिया और उसको एकत्रित करके आपने अपना जैन दर्शन बनाया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 10 झूठे झूठी बातों को एकत्रित करके एक सच हो सकता है कि नहीं? हाँ, अरे वो भी ऐसा कहते हैं कि आत्मा जला नहीं जा सकता है, वो है ना वो आपके गीता में आता है ना, क्या आता है, आत्मा न छिंदती ऐसा न जलाया नहीं जाता है, हाँ ये नैवम छिंदती शस्त्रानी, ऐसा मतलब सब छत्र से नहीं छेदा जाता है, वो जलता नहीं है, वो अजर है अमर है। देखो देखो अपनी बात बोल रहे, अरे अपनी नहीं अपने से टोटल विरोध है, क्यों, वो हमेशा आत्मा ऐसा ही है मानते हैं, और हम किसी अपेक्षा आत्मा परिणमता भी है, पर्याय की अपेक्षा आत्मा अनित्य ही है ऐसा हम भी कहते हैं, लेकिन वो उसको मानते नहीं। इसमें क्या हो गया है, हम तो हमें बराबर मालूम नहीं होगा तो हम कहेंगे देखो हमारे धर्म में उनके कोई फर्क नहीं है, खाली उनका भगवान ऐसा है अपना ऐसा है, बाकी तो एकदम बिल्कुल एक जैसा है। कहा कि अरे ये भगवान एक ही हो सकता है क्या, हजार हो सकते हैं भगवान एज अ क्वालिटी, भगवान का जो कोई जो माप है उनके जो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबके एक जैसे होने चाहिए कि नहीं? देखो आपने यहां किसी एक व्यक्ति को भगवान करके नहीं पुकारा है क्या, हम रोजाना नमोकार मंत्र बोलते हैं, आप बोलती है तो कौन से का नाम लेते हो आप, अरहंत नाम का कोई आदमी होगा जो अरहंत हो गया है या सिद्ध हम तो कहेंगे महावीर सिद्ध हुए, नेमिनाथ सिद्ध हुए, तो नेमिनाथ सिद्ध हुए यानी हम क्या कहते हैं, नमो सिद्धाणम, तो हम सिद्ध नामक जो पद है उस पद को नमन करते हैं, उस किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। और हम कहेंगे कि नमः महावीराय, तो हम एक व्यक्ति, और समझो एक 10-15-25 जो भी जितने और महावीर नाम के मोक्ष गए उनको हमने नमस्कार किया। जानते तो हम महावीर एक ही, लेकिन हम ऐसा मान लिए। और हम नमो अरियंतानम कहेंगे या नमो सिद्धानम कहेंगे तो अनंत आएगा कि नहीं, फर्क समझ में आए। तो हम किसी एक की बात लेते तो एक को ही वह दर्शाता है, और हम जब पद को कहते, जैसा हमने कहा कि ये कौन, अभी कौन सा वो तुम्हारा राम कृष्ण हेगड़े मर गया ना, वो तो हमारे पंत प्रधान मर गए, तो पंत प्रधान तो कितने हो गए हमारे, 8-10 हो गए, जो भी हो गए होंगे, तो सब थोड़ी मरे, अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी तो है ना। पर नाम लेने से एक व्यक्ति का इंगित होता है, और सिर्फ पद की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। और हमने हमारे इसमें तो बहुत ऐसी सुविधा है कि हम कहते हैं नमो लोए सव्व साहूणम, यानी नमो लोए सव्व अरिहंताणम। ये तो बात आप जानते हैं ना, लोए सव्व यह जो है वह अंत दीपक है, वो सबको लगता है। तो हमने विश्व के सारे अरहंतों को, सारे यानी कब अभी विद्यमान है उसके नहीं, अरे तीन काल के, तो एक नमस्कार करते हो तो आपको कितने पुण्य का लाभ है, देखो ख्याल में आया, हम उसकी बात नहीं सोचते। तो यहां पर ये कह रहे कि किसी एक धर्म को हम मुख्य करके बात करते हैं तो वह अपेक्षा सहित कहते हैं, तो वह स्यात पद से मुद्रित है। स्यात पद से मुद्रित है यानी कैसा, कि देखो आपके जेब में 500 रुपए की नोट है ना, सब मुझे निकाल के देखना, आई हियर बाय प्रॉमिस यू टू पे ₹500, और उधर उसका सिक्का होगा, मतलब उसके सिग्नेचर होगी। पहले के जमाने में राजा का ऐसा मुद्रा लगती थी, राजा कोई फरमान निकाले तो ऐसा स्टैम्प मारता था। तो वैसा हमारे जैन दर्शन का जो कोई सिद्धांत है वो स्याद वाद से मुद्रित है, उसको वहां इस अपेक्षा से उस अपेक्षा से वो कुछ नहीं लिखेंगे, वो बोलेंगे भी नहीं, ये हमारे तुम्हारे जैसे शूद्र होंगे वही उसका प्रॉपर अर्थ लगाएंगे, ख्याल में आया। तो यहां ये कह रहे हैं कि अनेकांतमय मूर्ति है, कौन मूर्ति है, तो हमने दिया है कि ज्ञान तथा वचन, यानी यह जो ज्ञान जो है वह, और वचन यानी जो जिनेन्द्र भगवान के वचन और उनका ज्ञान है वो कैसा है, तो कहते हैं जेमा अनेक अंत एटले धर्म छे एवु जे ज्ञान तथा वचन मय मूर्ति नित्यम एव सदाय प्रकाशताम, यानी प्रकाश रूप हो। यहां तो देखो अपने यहां देव गुरु और शास्त्र ये तीनों ही वंदनीय है, तो यहां शास्त्र कहो तो शास्त्र को ही यहां सरस्वती कहा गया है। तो सरस्वती देवी जो होती है वह तो ज्ञान की देवी कहा जाता है, विद्या की देवी कही जाती है, तो उनको यहां वर्णन किया है। तो ये देवी जो है वो कैसी है, ज्ञानमय है, वचनमय है। जो आम तौर से जगत में, खास करके अपने हिंदुस्तान में, सरस्वती देवी कहने से कोई विशिष्ट कोई व्यक्ति जो किसमें अभी मोर पे बैठी है, हाथ में वीणा लिए हुए, सफेद साड़ी पहनी हुई, ऐसी कोई वो स्कूल में सिखाते ये सरस्वती देवी है, तो ऐसी देवी यहां नहीं है, ये पहले ध्यान में रखना। तो कैसी है, अनेकांतमय जो मूर्ति है, मूर्ति यानी वो एक्चुअली कोई मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वो जो कुछ है वह मूर्ति स्वरूप है। क्या कहते हैं, देखो जेमा अनेकांत धर्म छे एवु जे ज्ञान तथा वचन ते मैं मूर्ति सदाय प्रकाश रूप हो। केवी छे मूर्ति ते मूर्ति, तो अनंत धर्मनः प्रत्यगात्मनः तत्वम, जे अनंत धर्मो वाळो छे अने जे परद्रव्यो थी ने परद्रव्यना गुण पर्यायो थी भिन्न तथा परद्रव्यना निमित्तति तथा पोताना विकारोति कथंचित भिन्न एकाकार छे एवा आत्माना तत्वने अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्योथी विलक्षण निज स्वरूप ने पश्यंती एटले ते मूर्ति अवलोकन करे छे देखे छे। तो ये किसको बताया कि वो कैसा ज्ञान के जो स्व को जानता है, ऐसा ज्ञान है अथवा ऐसा जो वचन है उसमें जो मूर्ति है, क्या कहा देखो देखो यहां समझा रहे हैं जे अनंत वा धर्म वाड़ो छे। ते कौन अनंत धर्म वाड़ो छे? तो कहे छे निज स्वरूप, वह जो निज स्वरूप है वह अनंत धर्म वाड़ो छे अने जे परद्रव्यो थी ने परद्रव्योना गुण पर्यायो थी भिन्न छे। देखो ये तो बहुत बेसिक बात है, हम तो जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अनंत गुण और पर्यायों से सहित है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये जो मूर्ति है, ज्ञान है या जो कोई वचन है वह कैसा है, परद्रव्यों से और परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न है। और क्या कहते हैं, परद्रव्यना निमित्तति तथा पोताना विकारोथी कथंचित भिन्न एकाकार छे। अब यहाँ क्या समझा रहे, देखो ये परद्रव्य जो है वह तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से यानी स्वचतुष्टय से तो तद्दन भिन्न ही है, इसलिए वह तो परद्रव्य और परद्रव्यों के गुण पर्यायों इनसे तो जुदा है ही है ख्याल में। लेकिन क्या कह रहे हैं, उनके निमित्त से यानी परद्रव्यना निमित्तति तथा, तो क्या परद्रव्यना निमित्तति तथा पोताना विकारो थी यानी अपने में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, जो विकारी परिणाम है, वो जैसे ये अत्यंत भिन्न ऐसे पर पदार्थ है वैसे नहीं है, वे कथंचित आत्मा के साथ अभिन्न भी है ख्याल में। उसको कौन सा संबंध बताया, याद है आपको? हाँ बोलो, नित्य तादात्म्य से। अच्छा आप क्या कहती हो मम्मी? हाँ अनित्य तादात्म्य संबंध। अच्छा आप क्या कहती है, याद दे, प्रश्न ही नहीं समझे, बहुत अच्छा, ये सबसे बढ़िया। उत्तर नहीं देने का हो तो बोलना, सब प्रश्न ही नहीं समझा क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां जो जीव में जो विकारी परिणाम हो रहे हैं उन विकारी परिणामों का और आत्मा का कौन सा संबंध है? हाँ विनोद भाई बता। अच्छा आप बताने, बोलो। अरे मेरे लिए नहीं बताने, सब समझने चाहिए और बाद में मैं रिपीट भी करूंगा। हाँ अनित्य तादात्म्य संबंध। और विनोद भाई क्या कहते हैं? अनित्य तादात। अच्छा साहब आप बता सकेंगे नित्य तादात्म्य संबंध किसका किसके साथ होता है? सरला बेन, कोई भी द्रव्य का अपने गुणों के साथ जो संबंध है वह नित्य यानी हमेशा तादात्म्य यानी एक मेघ हो गया है, ऐसा नित्य तादात्म्य संबंध है यानी द्रव्य और गुण कभी एक दूसरे से जुदे नहीं हो सकते हैं। वैसा यह जो विकार जो है एक समय की जो पर्याय है उनका द्रव्यों के साथ क्या कहा, कथनचित भिन्न एकाकार छे यानी कथनचित अभिन्न भी छे। समझ में आया? कथनचित यानी किसी अपेक्षा से भिन्न है और किसी अपेक्षा से अभिन्न है, और वो जो परद्रव्य जो है वो तो तद्दन भिन्न है। यहां तो दोनों में भिन्नता बतानी है, किसमें के परद्रव्य और परद्रव्यों के गुण पर्याय उनसे और इस जीव द्रव्य के अत्यंत भिन्नता है, बिल्कुल तद्दन भिन्नता है। लेकिन वह जो विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं वह विकार कथनचित भिन्न है यानी कथनचित अभिन्न भी है, ये मैं पहले बताना चाहता हूं। पहले तो हमें यह सिद्ध करना है कि वह कथनचित अभिन्न क्यों है, क्योंकि वो एक समय में जो उत्पन्न होने वाले विकार है वो किसके है वीरेश भाई? हाँ बोलो बोलो, जीव के। तो जीव क्या है ना, तो विकार जो उत्पन्न हो रहे वो जीव में हो रहे हैं, क्या धर्म द्रव्य में हो रहे हैं, आकाश में नहीं ना, तो कोई भी द्रव्य में न होते हुए जीव में हो रहे, यानी जीव में कहीं ना कहीं उनका संबंध है, तो यहां कहते हैं कि वो उस अपेक्षा से अभिन्न है, लेकिन उसका यानी उन विभाव परिणामों का और जीव का स्वभाव एक जैसा नहीं है, इसलिए कथनचित भिन्न है। क्या क्या समझाया? यह जो राग द्वेष के जो परिणाम मुझमें हो रहे हैं, क्या वह मेरा स्वभाव है? जो स्वभाव होता है वो त्रिकाल होता है। अभी ज्ञान यह जीव का स्वभाव है, तो ज्ञान कभी कभी होगा, यानी कभी कभी आत्मा के साथ रहेगा, क्या त्रिकाल रहेगा? इसलिए उसका नित्य तादात्म्य यानी एक में एक संबंध है। वैसा यह जो विभाव है, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के बाद मुझे हंसी आएगी, थोड़ी देर के बाद मुझे मान चढ़ेगा, थोड़ी देर के बाद मुझे लोभ होगा, थोड़ी देर के बाद अन्य क्या क्या होगा, वह पर्याय जो है वह एक समय मात्र टिकती है, एक समय मात्र टिकती, लेकिन है किसकी? उस द्रव्य की है, इसलिए उसका तादात्म्य संबंध है। लेकिन कैसा तादात्म्य संबंध है? अनित्य, कायम नहीं टिकने वाला है वो, लेकिन वो उस जीव का उस द्रव्य का स्वभाव नहीं है। स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो वह भिन्न नहीं है, क्योंकि वह विभाव रूप है, इसलिए कहते हैं कि कथनचित भिन्न एकाकार छे। ख्याल में आई बात? तो देखो, जो हमने लघु सिद्धांत प्रवेशिका में सीखा है ना, अरे वो मास्टर की हमारे हाथ में होगी तो समय सार जैसा विषय भी बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे यहां अभी एक सहज बात याद आ गई हो, यहाँ कोई बड़प्पन की बात नहीं है, ये हम पूना में गए थे ना अभी, तो पूना में बात निकली थी कि यहाँ पूना में एक स्वाध्याय मंदिर बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उस समय जिसके गले में ये बात आई थी कि तुम यहाँ स्वाध्याय मंदिर बनाओ, हा? आपका इतना बड़ा एरिया है, कुछ हमको दे देना, तो उन्होंने कहा स्वाध्याय मंदिर बनाना नहीं पड़ता है, स्वाध्याय मंदिर सहज हो जाता है, अगर आपको देखना हो तो आप बंबई में जाके दिनेश भाई के घर में जाके देखना, उन्होंने घर को ही मंदिर बना दिया है, ये बात वहां निकली थी, और वह भी जाने दो अभी किसने बोली थी, अगर छोड़ दो, मैं ये कहना चाहता हूं यहां जो स्वाध्याय मंदिर जो बना है उसका नारियल ये अरविंद भाई दोषी ने तोड़ा है, वह अकेला व्यक्ति है कि जो गए 12 साल से 92 से रोजाना आता है, और कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है, बड़ा बहुत इंजीनियर था, अभी तो रिटायर हो गया, कहने का मतलब ये है कि 12 साल से लगातार आता है, उनको ये बात गले बिल्कुल उतरेगी। ये जो लघु सिद्धांत परिषिका मैंने उनको अकेले को पूरी पूरी की पूरी अकेले को सिखाई थी मैंने, यानी सीखने वाला भी उतना ही चिकट था और सिखाने वाला उससे मुझे तो गर्व होता है, मेरा नहीं, हो ये सीखने वालों का जो लगातार इतने सालों से आते हैं। ख्याल में आए? बोलो जी, आपका
मेरा प्रश्न यहाँ जो लिखा है ना, विकारो थी कथनचित भिन्न एकाकार, तो भिन्न भी कहा और एकाकार भी कहा, ऐसा क्यों कहा नलिन भाई? कौन कहता है? सरलाबेन? हाँ, तादात्म्य। हाँ, और देखो देखो यहाँ बात क्या हो रही है, आत्मा का वर्णन चल रहा है, आत्मा के लिए विशेषण कौन कौन से लगाए? अनंत धर्म वालों छे, पहला 3 नंबर पेज पर है। दूसरा विशेषण क्या लगाया? परद्रव्यो थी भिन्न छे, परद्रव्य ना गुण पर्यो थी भिन्न छे, बराबर, सबसे भिन्नता बता रहे। अब कहाँ पर आए? परद्रव्य ना निमित्त थी थता पोताना विकारो थी कथनचित भिन्न छे। परद्रव्य थी थनारो विकार ने भगवान को देखा, भगवान परद्रव्य के स्वद्रव्य है, अपने भगवान भी परद्रव्य है। अब उनको देखकर जो शुभ भाव हुए वो क्या हुए? विकार के स्वभाव क्या हुआ? वो जो स्वाध्याय का परिणाम है वो क्या है? विकार, यानी विकार है नहीं खाली पाप परिणाम, वो विकार ऐसा नहीं है, उससे भिन्नता यहाँ बता रहे। क्यों भिन्नता बता रहे? यहाँ त्रिकाली जो शुद्ध भाव है उसकी चर्चा चल रही है। अब ये जो भिन्न कहा वहां रुकना, कौमा देना, और जो एकाकार है ये आत्मा का विशेषण है एकाकार। कथनचित भिन्न जो है वो पर्याय के साथ कहा, वो भले एक के समय के साथ है, एक समय के लिए तादात में, उसकी बात यहाँ नहीं रही। यहाँ भिन्न के बाद रुकना, कथनचित भिन्न है उससे, अभी सबसे भिन्न किया, परद्रव्यों से, उनके भावों से, उनके निमित्त से होनारी विकारों से सबसे भिन्न बता दिया, और अभी जो एकाकार है, क्योंकि सबको हमने गौण कर दिया, सभी पर्यायों को, तो जो रह गया वो एकाकार रह गया, त्रिकाल एक जैसा एक रूप स्वभाव जो है उसकी बात है। तो विकारों से तो कथनचित भिन्न, और जो एकाकार है, जे एकाकार छे, ऐसा आत्मा का वो विशेषण तरीके उसको लेना,
एकाकार छे एवा आत्मा,
एकाकार छे एवा आत्मा ना तत्व ने, यानी ऐसे आत्मा को जो बता रही है, जो अवलोकन करती है, कौन? ज्ञान। ऐसे आत्मा को जो अवलोकन करता है वो कौन है? वो सरस्वती है, वो और वो सदा जयवंत हो, यानी ऐसा ज्ञान हमेशा जयवंत वर्तो, आशीर्वचन रूप जो यहाँ मंगल कर रहे हैं उसकी बात यहाँ चल रही है। यानी सरस्वती की मूर्ति जो लौकिक में बोलते वो नहीं, जो ज्ञान अपने आप को इस रूप में देखता है, यानी अभी वर्तमान में राग द्वेष के परिणाम होने पर भी विकार होंगे ना, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारों के भी, उसका भी गौण करके अपने आत्मा को त्रिकाल शुद्ध एकाकार ऐसा देखना है, वो जो ज्ञान है वो हमेशा जयवंत वर्तो, ये बात यहाँ चल रही है।
अब यहाँ तो आ गए हम, एकाकार छे एवा आत्माना तत्वने, अर्थात क्या कहते हैं, असाधारण, उसका अर्थ क्या क्या, सजातीय विजातीय द्रव्योथी विलक्षण, ऐसा जो निज स्वरूप है। अब यहाँ असाधारण सजातीय और विजातीय द्रव्य की जो बात बताई है, तो ये क्या कहते हैं कि द्रव्योथी विलक्षण, विलक्षण यानी एकदम भिन्न, जुदा, कैसा है, विपरीत, तो कैसा है कि सजातीय यानी मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरे जैसे अनंत जीव भी है, अनंत आत्मा है, वे सारे सजातीय, और विजातीय यानी जो चेतन स्वरूप नहीं है, ऐसे इनसे भी मैं विलक्षण, ऐसा मेरा निज स्वरूप है। अभी देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अभी जो सिद्ध भगवान है श्री, वे भी ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, अनंत सिद्ध है, तो प्रत्येक सिद्ध अपने अपने ज्ञान दर्शन से सहित है, और मैं जो हूँ वो मैं मेरे ज्ञान दर्शन से सहित हूँ, तो मैं उनसे बिल्कुल जुदा हूँ, विलक्षण हूँ, उनके जैसा नहीं, इसलिए असाधारण। क्या वो असाधारण का उन्होंने डिवीजन कर दिया कि सजातीय यानी विजातीय, एवा द्रव्योति विलक्षण एवा निज स्वरूप ने ते मूर्ति अवलोकन करे छे, एटले ते ज्ञान के वचन ए मूर्ति ने, एटले निज स्वरूप ने देखे छे, एने जाने छे, एम कहे छे। भावार्थ, आई सरस्वती ने मूर्ति ने आशीर्वचन रूप नमस्कार करियो छे। ये भावार्थ किसने लिखा था वासंती बेन, जानती आप भावार्थ किसने लिखा था? कल मैंने बताया था, हाँ जी बोलो, जैसे ना चाहे, आप जानती है कविता जी? अरे अरे कितनी कविता है अपने यहाँ, सभी कवि बन गए, चलो अच्छी बात है। जयचंद जी छाबड़ा, भावार्थ जो लिखा था, तो जयचंद जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी, और यहाँ टीका जो लिखी है वो टीकाकार कौन है? अमृत चंद्राचार्य। और वो टीके का नाम क्या है? पीछे से प्रॉम्प्टिंग कर दे, अभी क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये मैं जानबूझकर बहुत प्राइमरी प्रश्न पूछता हूँ, हमने तो समय सार पढ़ डाला। अच्छा, तो उसमें भावार्थ किसने लिखा था? वो क्या मालूम, वो पंडित जी ने बताया नहीं था। अरे तूने देखने को नहीं आता क्या, तुझे तो दूसरे को नाम दे रहा है। हाँ, कुंद कुंद आचार्य ये समय सार प्रावृत के वे रचयिता है, उन्होंने वो लिखा है। हाँ? और उसके ऊपर अमृत चंद्राचार्य ने जो टीका लिखी है उसका नाम है आत्मख्याति, और वो आत्मख्याति संस्कृत में गद्य में और पद्य में गद्यात्मक और पद्यात्मक लिखी, लेकिन जैसा काल आगे आगे बढ़ने लगा तो लोगों को संस्कृत भी नहीं आने लगी, तो ये जयचंद जी छाबड़ा ने उसको ट्रांसलेशन किया और खुद का भावार्थ भी लिखा। तो वो जो भावार्थ था और जो कुंद आचार्य ने आत्मख्यातिकार अमृत चंद्राचार्य ने और भावार्थ लिखा वो पंडित जयचंद जी ने, वो भी समझने के हम काबिल नहीं रहे, तो एक तेजस्वी सूर्य उगा कांजी स्वामी, और उन्होंने ये गुजराती में सब समझाया, तो हम भी ऐसे नंबर एक निकले कि वह भी समझने नहीं लगे, इसलिए उनके जो प्रवचन हुए थे उसको हम समझने की कोशिश कर रहे। ख्याल में आए, अभी बात क्लियर हो गई?
देखो मूल जो है गाथा वो प्राकृत में है, जब जब गाथा कहेंगे।
हाँ, ये मूल जो गाथाएं हैं वो तो प्राकृत में है, और वो प्राकृत की गाथाएं अभी शुरू ही नहीं हुई है, ये आत्मघाती ग्रंथ की बात चालू है, और उसमें पहले अमृत चंद्राचार्य ने जो कोई पहले श्लोक लिखे हैं उनको हम पढ़ रहे हैं।
ये जो श्लोक है ना संस्कृत में श्लोक कहेंगे, और जो मूल है यानी समय सार उसको गाथा कहेंगे, श्लोकों को यहाँ कलश कहते हैं। जब कहेंगे कलश नंबर एक कलश नंबर दो तो उसमें समझना ये संस्कृत के श्लोकों की बात चल रही है जो अमृत चंद्राचार्य ने लिखे थे। ख्याल है?
देखो अभी एक नंबर का पृष्ठ निकालिए, तो ये गुजराती अनुवाद लिखकर जो श्री परमात्मा प्रणमी ने शारद गुरु नमीय जो लिखा है मिल गया, वो हिंदी में जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा था, और उसका ये हिम्मतलाल जेठालाल जो कोई थे हिम्मत भाई, उन्होंने ये गुजराती में उसका अनुवाद किया, उसको तो अभी हमने हाथ तक नहीं लगाया है, पहले तो सिर्फ नमस् समय साराय वाली बात ली थी। हाँ, ये अमृत चंद्राचार्य लिखु जी,
अभी तो ग्रंथ की शुरुआत नहीं हुई, मूल हाँ। समय सार ग्रंथ को शुरुआत नहीं हुई है, उसका ट्रांसलेट उसका टीका लिख रहे हैं ना वो आचार्य, वो अपना मंगलाचरण पहले कहेंगे, बाद में मूल ग्रंथ का लिखेंगे वहाँ, उसको गाथा नंबर एक कहेंगे। ये कलश नंबर एक और ये अभी दूसरा नंबर का कलश चल रहा है, श्लोक कहो या कलश कहो एक ही बात है, और यहाँ जहाँ जहाँ टीका लिखेंगे वो अमृत चंद्राचार्य की जो मूल संस्कृत टीका है उसका गुजराती अनुवाद यहाँ लिखेंगे,
और फिर उसके ऊपर स्वामी जी के
अब जो प्रवचन हो गए तो आगे चलकर पहले ये सब हो जाएगा और उसके आगे उसकी प्रवचन शुरू हो जाएगी।
अच्छा हो गया, मम्मी आपने पूछा इसलिए सब लोग समझ गए जल्दी, मैं भी भूल गया बताना। हाँ, आज कुंद आचार्य पाछड़ छे नाटक में, पहले नाटक शुरू होने के पहले सूत्रधार आता है, फिर ये ऐसा डायरेक्टर है ऐसा है वो है वो है सब बोलता है, फिर बाद में अंधेरा होता है, फिर बाद में पर्दा खुलता है, ऐसा वो पर्दा खुलने वाला है। चलो अब क्या कहते हैं, देखो भावार्थ पृष्ठ क्रमांक चार निकालना हो। अहीं सरस्वती ने मूर्ति ने आशीर्वचन रूप नमस्कार कर्यो छे, लौकिक मां जे सरस्वती नी मूर्ति प्रसिद्ध छे ते यथार्थ नथी तेती अहीं तेनु यथार्थ वर्णन कर्यो छे, जे सम्यक ज्ञान छे तेज सरस्वती नी सत्यार्थ मूर्ति छे। अभी बात क्लियर हो गई? ये भावार्थ में लिखा, हमको मालूम नहीं पड़ता था ना, तो जयचंद जी जानते थे कि हम ऐसे आगे वाले आने वाले जो कुछ नहीं जानेंगे, और फिर स्वामी जी भी जान गए कि ये भी नहीं समझने वाले, तो उन्होंने और उसके आगे बताया। मुझे किसी ने कहा कि आप डायरेक्ट शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते, ये स्वामी जी की बैसाखी लेके क्यों चलते हो, बैसाखी समझ गए क्लचेस। हाँ, तो वैसे तो हम अपनी योग्यता से पढ़ पाएंगे, लेकिन मुश्किल से समय सार समझने के लिए लोग आ रहे हैं, तो स्वामी जी जितनी गहराई से समझाएंगे जितनी सूक्ष्मता से वो बातें बताएंगे वो बातें हमारी समझ में आवे, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ख्याल में? चलो आगे क्या कहें कि लौकिक माँ जी वो हो गया थर्ड लाइन, जे सम्यक ज्ञान छे तेज सरस्वती नी सत्यार्थ मूर्ति छे तेमा पर संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान छे के जेमा सर्व पदार्थो प्रत्यक्ष भासे छे ते अनंत धर्मो सहित आत्म तत्व ने प्रत्यक्ष देखे छे तेथी ते सरस्वती नी मूर्ति छे। अभी ये सरस्वती की मूर्ति किसको बताया? पहले तो समझाया कि सम्यक ज्ञान को बताया, फिर वह सम्यक ज्ञान कैसा है तो कहते कि जिनेंद्र भगवान का जो केवल ज्ञान है उस ज्ञान को यहाँ क्या कहा? सरस्वती मूर्ति। हाँ, क्यों? देखो देखो, हाँ केवल ज्ञान है ना, पर्याय है ना, तो यहाँ तो ये केवल ज्ञान को ही क्यों नमस्कार करना, क्यों उनको ही क्यों सरस्वती मूर्ति कहना? तो कहते वो ज्ञान ऐसा अलौकिक है, अद्भुत है कि एक समय के केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक में रहने वाले जितने द्रव्य है, गुण है, उनकी पर्याय है और उनके अविभाग प्रतिच्छेद है, वे सारे के सारे एक समय में प्रत्यक्ष झलकते हैं। प्रत्यक्ष यानी उनके जानने के लिए कोई इंद्रिया या मन की मीडिया की, मतलब बीच में कोई ऐसा माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और हम जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान धारी जो क्षेपक्षम ज्ञानी है, हमें बाहर का कुछ देखना है अपने आत्मा को छोड़कर, तो हमें इंद्रियों का या मन का बीच में माध्यम होता है, मीडिया जिसको हम कहते हैं। जैसा हम समझते हैं, अभी हम यहाँ बैठे हैं, रास्ते में क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं एक्सीडेंट का आवाज आ गया और हमें बाहर का देखना है तो हम कहाँ से देखेंगे? कहाँ से देखेंगे? खिड़की में से देखेंगे, इतना समझता नहीं आपको, ऐसा पूछेंगे आप तो खिड़की में से देखेंगे कि खिड़की देखेगी? खिड़की में से यानी देखने वाला वो खिड़की के पीछे कोई है वह देखेगा। तो ये जो इंद्रिया है वो इंद्रिया देखते नहीं, इंद्रियों के माध्यम से देखने वाला या जानने वाला आत्मा का ज्ञान है, तो इसको माध्यम कहते, मीडिया। जैसे पांच इंद्रिया का अपना अपना स्वयं का अन्य अन्य विषय है, जैसे रस है उस मतलब रसनेन्द्रिय है तो उसके भी विषय अलग है, घ्राणेन्द्रिय है उसके भी विषय अलग है, चक्षु इंद्रिय उसके भी विषय अलग है, तो इस तरह या मन जो है वो मन भी जो कुछ उसके भी माध्यम से हम ज्ञान करते हैं। तो ये कहते हैं जब जब बाह्य पदार्थों को देखते हैं तो हमें इसकी गरज लगती है, इसलिए ये मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहने में आता है। और केवल ज्ञान कैसा है कि प्रत्यक्ष है, यानी उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। क्यों हमारा ज्ञान ऐसा क्यों और उनका ज्ञान ऐसा क्यों? तो हमारे जो मति श्रुत ज्ञान जो है वह आवरण सहित है, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण सहित है, ख्याल में? और वो कैसा है? निरावरण ज्ञान है, यानी उनके ज्ञानावरण पूर्ण खत्म हो गया है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अभी ऐसा मत बोलना मैंने सुना नहीं था, सब लोग सुनना सब। हाँ, क्या कह रहे हैं? जिसको केवल ज्ञान हुआ है उसका केवल ज्ञानावरण निकल गया है कि नहीं? क्या अन्य भी कुछ है? सौभाग चंद जी, हाँ, सिर्फ केवल ज्ञान निकल गया ना, कोई केवल ज्ञानावरण निकल गया ना। हाँ अरविंद भाई, आप कुछ कहेंगे? पूर्ण ज्ञानावरण निकल गया है हम ऐसा, तो अभी जिसको पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञानावरण निकल गया, बाकी मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण है, मन परि ज्ञानावरण है, तो वो कहेगा केवल ज्ञानी, तो उसको तो क्षायिक ज्ञान कहा ना साहब। क्षायिक ज्ञान का अर्थ क्या हुआ कि कर्मों का यानी ज्ञानावरण कर्म का पूरा पूरा क्षय हो गया है, इसलिए उसको क्षायिक ज्ञानी कहते हैं। तो हमारे में यानी जो आवरण सहित है, छद्मस्थ जीव है, उसके ज्ञानावरण कर्म है और उसके कारण हमारा ज्ञान इतना कमजोर है, तो उस ज्ञान को इंद्रिय और मन की माध्यमता की आवश्यकता है, इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और केवली भगवान का ज्ञान है वह कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। और दूसरी एक अभी थोड़ी सी बात निकली है तो बता ही देता हूँ। अभी हमें देखना है तो ये आंख जो है वो आंख के पीछे जो आत्मा के प्रदेश है वही सिर्फ देखने का कार्य करेंगे, यहाँ के जो आत्मा के प्रदेश है वो देखने का कार्य नहीं करेंगे। असंख्यात प्रदेशी हम भी हैं, असंख्यात प्रदेशी केवली भगवान भी हैं, लेकिन उनके एक एक प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से जानेगा। ख्याल में ये ऐसे केवल ज्ञानी की विशेषता है। अब आगे तो इसलिए क्या कहते हैं, जे थर्ड लाइन, जे सम्यक ज्ञान छे तेज सरस्वती नी सत्यार्थ मूर्ति छे तेमापन संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान छे के जेमा सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष भाषे छे। ये प्रत्यक्ष भाषे छे ये जो समझ में आया ना, हाँ तो देखो लौकिक में जो प्रत्यक्ष कहते हैं ना, हाँ वो तो हम जैसा आंख मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देखा ऐसा बोलते, वो प्रत्यक्ष और ये प्रत्यक्ष में काफी अंतर है। देखो मैं हमारे ससुराल में गया था तो हमारे वहां के रिलेटिव जो थे उसने कहा कि हमारे ससुर गुजर गए अभी कितने 20 साल हो गए समझो, है ना 20 साल हो गए, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे ससुर को प्रत्यक्ष देखा। बोला अच्छा कब? बोला मेरे सपने में आए थे। तो सपने में भी प्रत्यक्ष देखा, यानी ये प्रत्यक्ष का कोई इलाज नहीं, लौकिक के प्रत्यक्ष का कोई अर्थ ही नहीं है। यानी हमने किसी से सुना हो तो वो अप्रत्यक्ष, और आप स्वयं ने सुना, मैंने प्रत्यक्ष सुना है। अरे आचार्य कहते हैं ये जो इंद्रियों ज्ञान है वह तो परोक्ष ज्ञान है। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष का भेद समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। और कभी भी मैं अपने घर का उदाहरण देता हूँ, नहीं होगा फिर भी बनाता हूँ अपने घर का, ताकि आप अधिक क्यूरियोसिटी से सुने, क्योंकि हमें अपने तरफ झांकने की आदत नहीं रहती, दूसरे के यहाँ क्या चल रहा है। ख्याल में आया, ये बात निश्चित है कि मेरे ससुर मर के भी 20-22 साल हो गए, ख्याल में आया ना। लेकिन एक समझने का तरीका, ये लिखा ना इधर पदार्थो प्रत्यक्ष भाषे जे यानी वो भास होता है ऐसी बात नहीं, भास का अर्थ जाने छे। हाँ वो फिर अर्थ का अनर्थ मत करना। ते अनंत धर्मो सहित आत्म तत्व ने प्रत्यक्ष देखे छे, देखे जे कहो के जाने जे कहो, एक ये चैतन्य गुण है ना उसमें दोनों आ जाए। तेथी ते सरस्वती नी मूर्ति छे तदनुसार जे श्रुत ज्ञान छे ते आत्म तत्व ने परोक्ष देखे छे। भागो देखो ये अभी आ गई ना, परोक्ष देखे छे श्रुत ज्ञान। तेथी ते पन सरस्वती नी मूर्ति छे केवु छे ते श्रुत ज्ञान जे आत्म तत्व ने देखे छे। अभी एक अपेक्षा से देखा जाए तो जब यह जीव अपने स्वभाव का अनुभव करता है तो वह तो अनुभव प्रत्यक्ष ही है, और बहुत आप उसकी खींचातानी करो तो आत्मा का अनुभव जो ज्ञान कर रहा है वह भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब उसके डिटेल में मत जाना, बात सुन लेना, लेकिन यहां लिखा क्या है, आत्म तत्व ने परोक्ष देखे छे, तो यहाँ परोक्ष बताया ठीक है। हाँ जी हाँ,
उसके प्रदेश प्रत्यक्ष जानने में नहीं आते हैं इसलिए वो परोक्ष कहा।
हाँ वही अपेक्षा है ना। तेथी तेपन एटले सम्यक ज्ञानपन सरस्वती नी मूर्ति छे वड़ी द्रव्य शुद्ध वचन रूप छे तेपन तेनी मूर्ति छे। ये द्रव्य श्रुत याने ये जो वचन जो निकल रहे ना स्वम तीर्थंकरों के, तो वह किसके बारे में बता रहे हैं, तो कहते हैं कि आत्मा के बारे में, तो वह भी द्रव्य श्रुत जो है तो उसको द्रव्य श्रुत कहा। कहा गया वही द्रव्य श्रुत वचन रूप छे ते पद तेनी मूर्ति छे, कारण के वचनों द्वारा अनेक धर्म वाला आत्मा ने ते बतावे छे। आ रीते सर्व पदार्थों ना तत्व ने जणावनारी ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती नी मूर्ति छे। ये पहले जो आया था ना उसमें कि ज्ञान तथा वचन तेमय मूर्ति सदाय प्रकाशमान हो, प्रकाश रूप हो, तो उसकी यहां बात बताएं क्या कहा। आ रीते सर्व पदार्थोना तत्वने जणावनारी ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी, अनेकांतमयी यानी जिसमें अनेक धर्म है, इस स्वरूप जो है तो वो सरस्वती नी मूर्ति छे। किसको बताया इधर? वो ज्ञान को भी बताया, और उस ज्ञान जैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा कथन करने वाला वचन है, इन दोनों को सरस्वती का। तेथी सरस्वती ना नाम वाणी, भारती, शारदा, वागदेवी इत्यादि घना केवामा आवे छे। आ सरस्वती नी मूर्ति अनंत धर्मो ने स्यात पद थी एक धर्मी मां अविरोधपने साधे छे। एक धर्मो मां है के धर्मी मां है? एक धर्मी मां, बरोबर बरोबर, एक धर्मी होगा, धर्मो नहीं होगा। एक धर्मी यानी धर्म को धारण करने वाला ऐसा धर्मी यानी द्रव्य। एक धर्मी मां अविरोधपने साधे छे यानी एक ही द्रव्य में अनेक प्रकार के धर्म होते हैं। तेथी ते सत्यार्थ छे। केटलाक अन्यवादीओ सरस्वती ने मूर्ति ने बीजी रीते स्थापे छे, पण ते पदार्थ ने सत्यार्थ कहनारी नथी। कोई प्रश्न करे कि आत्मा ने अनंत धर्म वालो कयो छे, तो तेमा अनंत धर्मो कया कया छे? ये तो खाली सैंपल बता रहे। वस्तु मा सत्पणु, वस्तुपणु, प्रमेयपणु, प्रदेशपणु, चेतनपणु, अचेतनपणु। ये ख्याल में अभी जीव द्रव्य को भी अचेतनपना बताया तो वो कहते उसको वो धर्म भी उसमें है। हाँ जी बोलो बोलो।
देखो यहाँ वस्तु की बात चल रही ना, वस्तु मा। अच्छा अनंत धर्म आत्मा ने कया कया छे?
कई बांधो नहीं। तो चेतनपनु यानी जो आत्मा का स्वभाव है वैसा, अचेतनपनु यानी कभी कभी यह जीव शरीरों के साथ रहता है तो उसको अचेतनपना भी कहने में आता है। जैसा हमने उसको मूर्तिक भी देखा था, उसको पुद्गल भी कहा गया था। तो उससे आप घबराना मत, इसलिए अचेतनपनु मूर्तिकपनु भी दिया है। अमूर्तिकपणु इत्यादि धर्म तो गुण छे, अने ते गुणों त्रणे काले समय समय वर्ती परिणमन थवुं ते पर्याय छे जे अनंत छे। वळी वस्तुमा एकपणु अनेकपणु ये परस्पर विरुद्ध प्रतिभासित होने वाले धर्मों की बात कर रहे हैं। यानी वस्तु एक भी है और अनेक भी है। तो एक ही वस्तु एक भी है और अनेक भी है, ऐसा कैसा होगा? तो कहते एक है वह द्रव्य की अपेक्षा से और अनेक है वह गुण और पर्यायों की अपेक्षा से। नित्यपनु अने अनित्यपनु, भेदपनु अने अभेदपनु, शुद्धपनु अशुद्धपनु आदि अनेक धर्म छे। ते सामान्य रूप धर्मो तो वचन गोचर छे। ये जो कोई समझ में आवे ऐसे जो है वह तो वचन गोचर है, पण बीजा विशेष रूप धर्मो जेवो वचन नो विषय नथी एवा पण अनंत धर्मो छे, ते ज्ञान गम्य छे। आत्मा पण वस्तु छे, तेथी तेमा पण पोताना अनंत धर्मो छे। देखो क्या कह रहे हैं, ये तो आप अच्छा बीच में से रास्ता निकालते हो। कैसा? कि विशेष रूप जो धर्म है वो वचन के विषय नहीं है, ऐसा कह के आप अनंत धर्मों को बताने से बचना चाहते हैं। तो कहेंगे अनंत धर्मों को बताने वाला अनंत काल तक जिंदा रहना चाहिए। अगर वह बताने वाला जिंदा रहे तो जिसको सुनने वाला है ना जो, वह भी अनंत काल तक टिकना चाहिए। क्योंकि ये अनंत की जो अनंतता है वो हमारे ख्याल में नहीं आती। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई विशेष रूप धर्मो जे वो वचनो विषय नहीं, वचनो विषय नहीं, ऐसा कैसा हो सकेगा? अभी वचन का विषय नहीं, ये कैसी बात है? तो मैं आपसे पूछूंगा क्या साहब आप रोजाना घी खाते हो क्या? नहीं खाते? खाते हो तो उसका स्वाद कैसा है, बोलो ना। अरे घी का स्वाद घी जैसा, अपन घी का स्वाद कैसा होता है हमको बताना है किसको, तो ये वचन गोचर नहीं है। हाँ, शक्कर खाते हो, शक्कर कैसा है, मीठा है, और गुड़ कैसा है, दोनों ही मीठे हैं। आम कैसा है, वो भी मीठा है, तो तीनों ही मीठे हैं तो एक जैसा है क्या, उसमें कोई अंतर है क्या, नहीं ख्याल में है। ये वचन गोचर नहीं कहते तो हमको लगता है ये तो भागम पट्टी कर रहे कहीं एस्केपिज्म है, ऐसा नहीं है प्रभु। तू क्या कहते हैं, गहराई से सोच तो तुझे भी ये बात पता लगेगी। अभी ये ऐसा क्यों हमको लगता है, मैं ये बात बहुत बार बोल दिया हूँ लेकिन काफी लोग नए हैं तो वो भी समझ जाएंगे कि देखो ये एक एक द्रव्य में कितने गुण है, इसका जगह हम कुछ तलाश में रहेंगे तो शास्त्र में ऐसा वचन आता है कि इस विश्व में जीव तो अनंत है। क्या कहा, अनंत जीव है। क्यों, जो अनंत जीव है उससे भी अनंत गुना पुद्गल द्रव्य है। ये तो आपने सुना होगा पुद्गल द्रव्य तो अनंत है, लेकिन वो आप जरा और मैं आपको बताऊंगा वो अनंतता कितनी है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो एक द्विरूप वर्ग धारा नाम की धारा है, कैसी है कि दो जो होता है अंक, एक अंक लेंगे तो एक का स्क्वायर कितना होता है मालूम है आपको, एक का वर्ग जिसको कहते हैं, आप जानती हैं नहीं, ये मैथमेटिक्स है, हमारे भी कामनर आपका भी नहीं है, वीरेश भाई बताएंगे। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, अरविंद भाई बोलते हैं एक ही, और दो का चार। तो दो से हम चालू करेंगे तो दो का वर्ग चार, पहले बार एक वर्ग हो गया, चार का वर्ग सोलह, दो बार हो गया, सोलह का वर्ग 256, तीसरी बार हो गया, 256 का वर्ग 65,536, कितनी बार हो गया, चार बार। तो हम चार बार करेंगे तब भी कितने लोगों को ये मालूम नहीं, मुझको भी आगे का मालूम नहीं है, और 65,536 का वर्ग जो है वो 10 अंक की संख्या होती है, 10 डिजिट्स, उसको बादाल कहते हैं। और ये जो बादाल पांचवा उसका छठा यानी इसका वर्ग जो करेंगे उसको कहते हैं इकट्ठी, वो 20 अंक प्रमाण संख्या है। तो हम 6 बार वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करेंगे तो हमारे को थोड़ा थोड़ा ठंडी के दिनों में भी पसीना सा लगता है। अब ये समझाते हैं कि दो का वर्ग हमने 5-6 बार किया, ऐसा दो का वर्ग का वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग अनंत बार करो तो जो कुछ संख्या आएगी वह पुद्गल द्रव्य की संख्या। हाँ अभी और रुकना है बीच में,
देखो देखो जीव से हमने शुरुआत किया ना, जीव अनंत,
हाँ हाँ,
वो भी बहुत आगे के अनंत अनंत स्थान जाने पर आता है। अब जीव की जो संख्या आई उसको अनंत अनंत बार वर्ग करो,
यानी जीव स्टार्टिंग जीव का पहले अनंत
स्टार्टिंग पॉइंट जीव की संख्या लेंगे अभी।
हाँ चलो चलो वैसा ले लो, पहले पछता नहीं था। और आप हेवी डोज दे रहे, चलो इनका कहना बिल्कुल सही है, ये ऐसा समझा रही हैं, ये जैसा हमने उदाहरण देखा वैसा पहले हमारी जो मूल संख्या दो थी उसको हटा दो, उसकी जगह वो जीव की संख्या रखो कितनी, अनंत। तो अनंत का वर्ग जो होगा उसका वर्ग जो होगा उसका वर्ग जो होगा ऐसा अनंत का अनंत बार वर्ग करो तो जो संख्या आएगी वह पुद्गल द्रव्य की संख्या है। अभी एकदम ठंडी के दिनों में घी जैसा जम जाता है, ऐसे अपनी बुद्धि थोड़ी सी बैठ गई ना नीचे, हमें क्या देखना है डॉक्टर साहब एक द्रव्य में गुण कितने। तो यहाँ हमने खाली ऐसा ही सीखा था पढ़ा था कि जीव अनंत उसके अनंत गुना पुद्गल द्रव्य, अब ये कितने पुद्गल है समझ में आए, उससे अनंत गुना तीन काल के समय, जो अनादि काल से अनंत काल तक जो कोई समय होंगे वो कितने हैं। तो पहले उसको भी थोड़ा समझाता हूं, है 5 मिनट। एक सेकंड जो होता है उस एक सेकंड में सैकड़ों आवली होती है और एक आवली में असंख्यात समय है, ख्याल में, एक सेकंड में तो ऐसे असंख्यात सैकड़ों बार जावे तब एक सेकंड होता है, तो एक समय कितना छोटा है। ऐसे तीन काल के समय गिन लो साहब, अभी एक सेकंड में सैकड़ों आवली, दो सेकंड में उससे भी डबल, तीन सेकंड में, एक मिनट में, अभी गिनते जाओ। ये असंख्य का पहले प्रमाण बताएंगे तो और भी खत्म हो जाएगी बात। चलो, तो ये तीन काल के समय पुद्गल से भी अनंत गुना अधिक,
यानी जो पुद्गल की अभी हमने संख्या निकाली थी, अब वो पुद्गल का जो अनंत वाला जो संख्या है उसको अनंतानंत बार वर्ग करो,
वर्ग
उसकी संख्या
का वर्ग, वर्ग का वर्ग, हाँ।
तब जो तीन काल के समय आएंगे,
अब वो जो तीन काल के जो समय है उससे अनंत गुना ये आकाश द्रव्य के प्रदेश है। लोकाकाश के नहीं हो, लोकाकाश और अलोकाकाश, ये लोकाकाश जो है वह तो असंख्यात प्रदेश ही है, उसके दसवीं दिशा में। और आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जो नहीं जा सकते, जाओ आगे, जाओ आगे, जाओ आगे, जिसका अंत नहीं आवे वह अनंत। तो ये आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने अनंत, ख्याल में आया? तो वो जितने आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत है, क्योंकि एक सुई का नोक जो होता है वह भी हम ऐसा यहाँ टिकाते हैं तो वह सुई का नोक भी असंख्यात प्रदेश को रोकता है, वो तो हमारे आंखों को दिखता है। अरे जो औदारिक शरीरधारी ऐसे जो निगोद है, जिसका एक शरीर हमारे आंखों से क्या दूरबीन से भी नहीं दिखता है, वह भी असंख्यात प्रदेश रोकता है। तो ये लोकाकाश में कितने असंख्य, लोकाकाश में कितने असंख्य, तो असंख्य कल्पना नहीं कर सके हम, ख्याल में आया? अरे ये रूम में एक एक सुई लगाओ तो कितनी सुई लगेगी बोलो, खाली नीचे नहीं, एक 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 पॉइंट पे एक एक ऐसे पूरे लगाओ, ऐसे आखी सुई एक इंच की दो इंच की मत लेना, तो पूरे बम्बई में कितने लगेंगी, यानी कितने असंख्यात के असंख्यात प्रकार है। तो वो तो लोकाकाश और अलोकाकाश, वो अनंत अनंत की बात चल रही, तो उसके आकाश के प्रदेश उससे भी अनंत गुना अधिक, और जितने लोकाकाश के प्रदेश है उससे, अरे आकाश के प्रदेश है उससे भी अनंत गुना एक द्रव्य में गुण है। अब बोलो किसको सुनना है, बोले कहीं काम धंधा नहीं क्या, जरा अभी 8:30 होने लगी, चलो बंद करो। क्यों वीरेश भाई, ये यहाँ जो बता रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अरे आप तो भाई ऐसा कुछ भी हो गया तो भाई ऐसा है बस, ये बस मानो मानो मानो, नहीं तू भी मान साथ में, ख्याल में आया? तो क्या कह रहे, देखो कोई प्रश्न करे कि आत्मा ने अनंत धर्म वालों कहो, तो तेमा अनंत धर्मो क्या क्या है, तो उसका उत्तर दिया। और नीचे कहते विशेष रूप से धर्मो जेव वचन नो विषय नथी एवा पन अनंत धर्मो छे जे ज्ञान गम्य छे केवड़ीए जाण्या छे ने केवड़ीए कह्या छे। आत्मा पन वस्तु छे तेथी तेमा पन पोताना अनंत धर्मो छे। अभी यह तो हमने ये नहीं बताया था कि आत्मा में इतने अनंत है, हमने तो ये बताया कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। अरे एक प्रदेश ही ऐसा जो पुद्गल द्रव्य है, एक प्रदेश ही जो काल द्रव्य है, इन प्रत्येक द्रव्य में इतने अनंत गुण है। गुण की अपेक्षा से देखा जाए, भाव की अपेक्षा से देखा जाए, तो हरेक द्रव्य में तो गुण तो एक सरके है, क्वांटिटी की अपेक्षा से, प्रदेश की अपेक्षा से दे दो छोटे बड़े हैं। कोई एक प्रदेश है, कोई असंख्य प्रदेश है, कोई अनंत प्रदेश है, ख्याल में आया? काल की अपेक्षा से देखा जाए तो तीनों का काल, सबका काल एक जैसा है, ये इस तरह हम देखा है। अब हम आगे की बात कल देखेंगे। ये तो बहुत स्लो चल रहा है ऐसा लगता है मुझको, क्या चलेगा?
वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी म सकण मो सदा देत हो।